तारा परी ने सोनल परी की मदद से असली करिश्मा जी को ढूंढ लिया और नकली करिश्मा का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन अमन सिंह राठौड़ उस नकली करिश्मा के बहकावे में आकर तारा परी पर हमला कर दिया और बहुत तेजी से उसका गला दबा दिया। लेकिन सही वक्त पर असली करिश्मा जी आ गईं और उन्होंने अमन पर हमला करके तारा परी को बचा लिया। और असली करिश्मा को वापस आते देख नकली करिश्मा एक काला धुआं बनकर उड़ गई। अमन को जब एहसास हुआ कि तारा परी बेगुनाह है, वो बहुत पछताया और जोर से एक मुक्का जमीन पर मार दिया, जिससे उस कमरे का फर्श टूट गया और दीवारें, शीशा समेत सब कुछ टूट गया। तब करिश्मा जी ने तिलिस्मी पत्थर का प्रयोग करके पहले तारा परी को ठीक किया और फिर खुद पर उसका प्रयोग करके अपनी जादुई शक्ति एक बार फिर से पाली। अपनी जादुई शक्ति के द्वारा करिश्मा जी ने अपना कमरा पहले जैसा कर लिया और कुछ मंत्रों का प्रयोग करके उस तिलिस्मी पत्थर को उसी जगह भेज दिया जहाँ से अमन उसे लेकर आया था। और इन सब उधेड़ बुन में वो काली रात बीत गई और करिश्मा जी के लिए ये नई सुबह एक नई उम्मीद के साथ आई, क्योंकि आज उन्हें अपनी बेटे की शादी की बात भी तो करनी थी तारा परी से। जब से अमन ने तारा परी से अपनी मोहब्बत के बारे में करिश्मा जी को बताया था, तब से वे फूले नहीं समा रही थीं। और सुबह होते ही वे तारा परी के दरवाजे के सामने पहुंच गईं और दरवाज़ा खटखटाने लगीं। लेकिन जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर भी तारा परी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो करिश्मा जी को किसी अनहोनी के होने की आशंका होने लगी। और तब करिश्मा जी ने तारा परी के कमरे के दरवाजे पर अपने जादू का प्रयोग करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। करिश्मा जी जल्दी से अंदर गई और उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि तारा परी वहाँ नहीं थी और ना ही उसका सामान वहाँ था। करिश्मा जी तारा परी को ना पाकर बहुत परेशान हो गई और वे तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगी, अमन, अमन, अमन। वहीं सोते हुए अमन के कानों में जब अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज़ पड़ी तो वो एक झटके से खड़ा हो गया और अपनी माँ की आवाज़ों का पीछा करता हुआ तारा परी के कमरे के बाहर पहुँच गया। उसने देखा करिश्मा जी तारा परी के बेड के एक सिरे पर अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। अमन बिजली किसी तेजी से अपनी माँ के पास पहुँच गया और बोला, क्या हुआ माँ, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही थी, सब ठीक तो है ना? तब करिश्मा जी ने कहा, गौर से देखो अपने चारों ओर, तुझे क्या सब ठीक दिखाई दे रहा है? वो देखो, तारा यहाँ नहीं है और ना ही उसका सामान यहाँ पर है। वो बच्ची चली गई यहाँ से सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। तूने एकदम जानवर की तरह उस पर वार किया था और वो बेचारी मासूम सी बच्ची तेरे उस वार को भना कब तक सहन कर सकती थी? आखिर थी वो एक इंसान ही ना। अब तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाओ जाकर ले आओ उसे, मुझे तारा हर हाल में चाहिए और वो हमारे बारे में सब कुछ जान गई है। और अगर उसने ये बात शहर भर में फैला दी तो हम लोग किसी काम के नहीं रहेंगे। सभी इंसानों को हमारे बारे में पता चल जाएगा और इंसानों के साथ साथ हमारे वो दुश्मन भी हमें पहचान जाएंगे जो बरसों से हमें ढूंढ रहे हैं, जो अब इंसानों के भीष में रहते हैं। और अमन, शायद तू भूल रहा है, उस लड़की की जान बचाने के लिए मैंने उस पर तिलिस्मी पत्थर का प्रयोग किया है, जिसका मतलब है अब तिलिस्मी पत्थर का एक अंश उस लड़की के अंदर भी है और तिलिस्मी पत्थर की एक चौथाई शक्ति अब उसके अंदर आ चुकी है। तो इसका मतलब समझ रहा है ना, हमें जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढना होगा। उस लड़की का बाहर खुले में रहना ना उसके और ना ही हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। और तिलिस्मी की शक्ति को बाहर खड़े हमारे दुश्मन बहुत दूर से पहचान लेंगे और अगर उन्होंने पहचान लिया तो उस लड़की की जान कोई नहीं बचा सकता। आखिर है तो वो एक मामूली इंसान ही, कब तक किसी का सामना कर सकती है? करिश्मा जी ने अपना अंदेशा जाहिर किया और अमन को तारा परी को ढूंढकर लाने के लिए भेज दिया। करिश्मा जी तारा परी के अचानक यूं चले जाने से काफी गुस्सा थीं, क्योंकि जब से अमन ने तारा परी से अपनी मोहब्बत के बारे में बताया था तब से वे उसे लेकर एक ही रात में ढेरों सपने बुन चुकी थीं और अब अचानक तारा परी के चले जाने से उसे उसके सारे सपने टूटते हुए से नजर आने लगे थे। वहीं अमन ने जैसे ही ये जाना कि तारा परी वो बंगला छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी तो उसका दिल टूट चुका था। वो तो वैसे ही पछतावे की आग में जल रहा था और तारा परी ने तो उसे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया था और वो चली गई थी। बस अमन को रह रहकर एक ही बात सता रही थी कि कहीं तारा उसके जिन वाले रूप से डरकर तो नहीं गई है, क्योंकि जिस वक्त वो उसका गला दबा रहा था उस वक्त वो आधा जिन और आधा इंसान बन चुका था और वो आधा जिन बनकर ही तारा परी का गला दबा रहा था। वैसे अमन को अब देर नहीं करनी थी, सो वो करिश्मा को वही बैठा हुआ छोड़कर उस कमरे से बाहर निकल गया और कुछ ही मिनटों में तैयार होकर वहाँ से बाहर निकल गया और गाड़ी सड़कों पर दौड़ाने लगा। वो चारों ओर देख रहा था लेकिन पूरे 3 घंटे सड़कों की धूल छानने के बाद भी तारा परी का कहीं नामो निशान तक नहीं मिला था। तब अमन के दिल में एक ख्याल आया, मालिका का। हाँ, अमन ने सोचा, शायद तारा मालिकाका के यहाँ चली गई हो और उसने अपनी गाड़ी मालिकाका के घर की ओर मोड़ ली थी। वहीं तारा परी अमन और करिश्मा की सारी बातें सुन चुकी थी कि करिश्मा जी अमन से उसकी सगाई कल ही करा देंगी। तारा परी ने जैसे ही ये सुना उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वो खुशी में अपने कमरे में चली गई थी और वहाँ जाकर उसने सारी बात सोनल परी को बताई थी। लेकिन सोनल परी के चेहरे पर उसे कोई भी खुशी दिखाई नहीं दी थी। तब तारा परी ने उससे कहा, क्या हुआ, तुझे कोई खुशी क्यों नहीं हुई? मेरा धरती पर आने का मकसद पूरा होने वाला था। मेरी शादी बिना किसी मेहनत के नेक दिल इंसान से होने वाली थी और जल्द ही मेरा मकसद पूरा हो जाएगा
और हमारे मिलन से जो बच्चा पैदा होगा मैं उसे लेकर तुरंत परीलोक चली जाऊंगी और उस राक्षस का सर्वनाश कर दूंगी। तब सोनल परी ने कहा, तारा एक बात बताओ, तुम्हें कहां से ये राक्षस नेक दिल इंसान लगता है? किसी जानवर की तरह ये तुम्हें मारने के लिए टूट पड़ा था। अगर ये नेक दिल इंसान होता तो ऐसा कभी नहीं करता। मुझे शक हो रहा है इस पर, ये वो नहीं हो सकता है जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। सोनल परी की बात सुनकर तारा परी सोच में पड़ गई। आखिर सोनल परी जो भी कह रही थी उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो थी। तब फिर भी तारा परी ने कहा, लेकिन सोनल जब वो पहली बार मुझसे टकराया था तब कुल देवता का दिया हुआ ये लॉकेट जगमगाने लगा था, तो फिर ये क्यों जगमगा रहा था? और कुल देवता ने भी कहा था जब भी वो इंसान मेरे सामने आएगा ये लॉकेट जगमगाने लगेगा, और वही हुआ तो उसे पहचानने में भूल कैसे हो सकती है? तब सोनल परी ने कहा, लेकिन तारा एक बात भी तो सोचो, तुम कुल देवता ने कहा था जब भी वो नेक दिल इंसान तुम्हारे सामने आएगा ये लॉकेट जगमगाने लगेगा, लेकिन ये तो इंसान ही नहीं है। तू तो अच्छे से जानती है कि अमन सिंह राठौड़ एक इंसान के भेस में एक खतरनाक जिन है, वो तो इंसान ही नहीं है, तो फिर तू कैसे कह सकती है कि ये वही है? अब तारा परी का दिमाग चारों ओर घूमने लगा था और वो बोली, तो अब क्या किया जाए, कैसे पता लगाया जाए? क्योंकि कल तो करिश्मा मैडम मेरी सगाई अमन से कराने की बात कर रही थी, और अगर एक बार मेरी सगाई अमन सिंह राठौर से हो गई तो मेरा भाग्य उसके साथ जुड़ जाएगा और फिर मैं चाहकर भी उससे नाता नहीं तोड़ पाऊंगी। ओह, तो इसका अब एक ही इलाज है, हमें अभी यहाँ से जाना होगा, सोनल परी ने कहा।
तारा परी, लेकिन इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? तब सोनल परी ने कहा, शायद तुम भूल रही हो, तुम कोई आम इंसान नहीं, परी हो, और परी को रात हो या दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सोनल, शायद इस बार तुम भूल रही हो, मैं अपनी इंसानी ज़रूरतों के लिए अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती हूँ, मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। तब सोनल परी ने कहा, तुम नहीं कर सकती हो तो क्या हुआ, मैं तो कर सकती हूँ, मुझ पर तो कोई बंदिश नहीं है, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। तारा परी को सोनल का आइडिया पसंद आया। उसके बाद तारा परी ने एक जगह सोनल के मन में छाप दी और सोनल परी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तारा परी को उसके सामान के समेत माली काका की उस पार्क में ले गई जहां वो पहली बार परीलोक से पृथ्वीलोक पर आई थी। तारा परी को जल्दी से कहीं और जाने की कोई जगह नजर ही नहीं आई थी। माली काका के घर वो जा नहीं सकती थी, सो उसे केवल वो बगीचा ही याद रहा जिसकी रखवाली माली काका करते थे। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि उस बगीचे का मालिक कोई और नहीं बल्कि अमन सिंह राठौर ही था। तारा परी और सोनल परी दोनों बगीचे के उसी बरगद के पेड़ के नीचे चली गई थीं जिस पेड़ के नीचे तारा परी के परीलोक के कपड़े गहने दफन थे। यहाँ आकर तारा परी ने सोनल परी से कहा, जल्दी से अपनी शक्तियों का प्रयोग करो और मेरे लिए सोने के लिए बिस्तर बनाओ और खाने के लिए भी कुछ मंगवाओ। तारा परी चिढ़कर बोली, ओह ठीक है रानी माँ, जैसा आपका हुक्म। सोनल परी ने इस अंदाज से कहा कि तारा परी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, और उसके हंसते ही उस बड़े से बगीचे का एक एक फूल खिल उठा, और फूलों के खिलते ही वो बगीचा और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। वे दोनों वहां की खूबसूरती में खोसी गई थीं। उसके बाद सोनल परी ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके तारा परी के लिए उसकी पसंद का सारा खाना मंगवा दिया और उसके सोने के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत बिस्तर तैयार किया और बोली, अब तुम आराम करो, और अमन नेक दिल इंसान है या नहीं इसका पता हम लोग कल लगाएंगे, तब तक मैं कोई ना कोई रास्ता निकालती हूँ।